ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ಪ್ರಜನರಂಜನ ಯಶಾದನಂದನ ಪ್ರಜನರಂಜನ ಹೇಮೋನತೀರ ವನಚಾರೀಯಂ ಯಮುನತೀರ ವನಚಾರೀಯಂ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಬಾಲದೇವ ಜಯ ಸುಭದ್ರಾ ಯ ಗೌರನಿತಾಯ 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 ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಭರಿ ಬಾಲ ಹರಿ ಭ ಹರಿ ಬೋಲ್ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾ 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 ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಶ ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಶಿಕೀ. ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿರಾಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕೆ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಹಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪದಾನ್ ಸಹಗಣಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज श्री श्री नरसिम्हदेव जयंती है, श्री श्री नरसिम्हदेव का प्राकट्य दिवस। तो नरसिम्हदेव भगवान का जो प्रकट होके उनको जो लीला है, समय का जो अवधि से देखा जाए बहुत कम समय के लिए था। भगवान की अनेकों लीलाएं, जैसे कृष्ण 125 साल तक उन्होंने लीलाएं किए, प्रकट लीलाएं। भगवान रामचंद्र हजारों साल तक प्रकट लीलाएं किए। जितने भी लीलाएं वामन देव बहुत समय तक थे, लेकिन नरसिम्हदेव का विशेषता क्या है, प्रकट हुए उसी समय उसी दिन कुछ ही घंटों में वो अप्रकट भी हो गई, लीला किए चले गए। प्रकट लीला वापस अप्रकट लीला। प्रकट लीला जो है समय की अवधि से देखा जाए बहुत कम समय के लिए था, लेकिन उनका जो वर्णन है खाली कुछ ही समय का लीला है। अनेकों शास्त्रों में अनेकों अनेकों जगह हुआ है, अनंत है भगवान। जिस प्रकार अनंत है भगवान की लीलाएं भी अनंत है। भागवत में अन्य जगह नरसिंह पुराण में अनेकों जगह आप भगवान नरसिम्हदेव की लीलाएं सुनते हो। तो इस बार कुछ भक्तों ने कहा कि प्रभु जी इस बार का क्या स्पेशलिटी है। पिछली बार जब नरसिंह लीला का वर्णन किए थे, एक विशेष बात के ऊपर वर्णन किए थे नरसिम्हदेव का, वो है प्रहलाद महाराज की जो स्तुतियां हैं, उस स्तुतियों में किस प्रकार लक्ष्मी जी भी नरसिम्हदेव को देख के आश्चर्यचकित हो गई थी, उसका वर्णन हमने किया था 2-3 श्लोक प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में। आज तक जो लक्ष्मी जी भी नहीं देखा वैसा रूप था वो, लेकिन लक्ष्मी नित्य नरसिम्हदेव के साथ में रहती है। वैसा कैसा कि लक्ष्मी जी भी नहीं देखा था, इसके ऊपर हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो इस बार हम कुछ लोगों के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत विशिष्ट है, बहुत सूक्ष्म है। ये श्लोक 4 श्लोक आपको दिए गए हैं। ये 4 श्लोक ये कोई पुराण या शास्त्र से नहीं है, ये 4 श्लोकों की रचना श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने किया है। श्रीधर स्वामी आप सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उनको भागवत के मूल टीकाकार के रूप में स्वीकार किया। जब श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा महाप्रभु को, मैंने ऐसे अनोखा टीका लिखा है भागवत के ऊपर जो श्रीधर स्वामी के टीका से भी श्रेष्ठ है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सीधा, तुम एक वेश्या हो, जो स्वामी को स्वीकार नहीं करता वो वेश्या है। इसका अर्थ क्या है, जो भागवत का टीका करते हुए श्रीधर स्वामी के टीका के अनुसार नहीं करता है तो वो टीका जो है वेश्या की टीका के बराबर है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं के शब्द है। तो श्रीधर स्वामी का टीका जो है भागवत का मूल टीका है। तो भागवत का मूल टीका जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया श्रीधर स्वामी का टीका का, वो टीका का शुरुआत में ही ये पहला श्लोक लिखते हैं श्रीधर स्वामी। अब देखिए ये श्लोक की सूक्ष्मता देखिए। ये श्रीधर स्वामी अपना कमेंट्री, भागवत का पहला श्लोक क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्तोन्वयाचतहर्तेश विघ्नेश्वराट तेने ब्रह्मृदा यादिकवये मुह्यन्त्यसुरयः तेजो वारि मृदन्यता विनिमेत्र सर्गं मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का टीका का शुरुआत में अनेकों अनेकों आचार्य स्तुतियां की, प्रार्थना की, लेकिन श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस श्लोक को रचना करते हैं। ये जो श्लोक है श्रीपाद श्री नरसिम्हदेव को वर्णन करने वाली श्लोक है, नरसिम्हदेव को प्रार्थना करने वाली श्लोक है, प्रणाम करने वाली श्लोक है। अभी चलिए देखते हैं कि क्या है वो श्लोक। ये चारों के चारों श्लोक श्रीधर स्वामी के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा श्लोक है 7वां स्कंद का 9वां अध्याय का पहला श्लोक का टीका में श्रीधर स्वामी के द्वारा लिखा हुआ श्लोक है। तीसरा श्लोक है 10वां स्कंद का क्या बताएं 87 को सत्तासी सत्तासी अध्याय का पहला श्लोक का टीका है, दसवां अध्याय का सत्तासी श्लोक का इकतीसवां श्लोक का जो टीका में ये श्रीधर स्वामी का श्लोक प्राप्त होते हैं। यानी ये चारों श्लोक की रचना किसने किया है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने किया है। कहां किया है? भागवत की टीका में किया है। तो पहला श्लोक को देखते हैं। प्रहलाद हृदयालाद प्रहलाद हृदयालाद भक्त्या विद्या विदारणम् भक्त्या विद्या विना विदारणम् शरदिन्दुरुचिं वन्दे शरदिन्दुरुचिं वन्दे मारीन्द्रवदनं हरिं मारीन्द्रवदनं हरिं प्रह्लादहृदयाह्लाद प्रह्लादहृदयाह्लाद भक्त्या विद्या विदारणा भक्त्या विद्या विदारणम् भक्त्या विद्या विदारणम् शरदिन्दुरुचिं वन्दे शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रवदनं हरिं पारीन्द्रवदनं हरिं पारीन्द्रवदनं हरिं। कोई उच्चारण करो। प्रह्लाद हृदयाह्लाद भक्त्या विद्या विदारणम् शारदिन्दं ऋषिं वन्दे पारीन्द्रवदनं हरिं। माता शेख प्रह्लाद हृदयाह्लाद भक्त्या विद्या विदारणम् शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रवदनं हरिं। प्रह्लाद हृदयाह्लाद भक्त्या विद्या विदारणम् शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रवदनं हरिं। तो ये श्रीधर स्वामी का पाद का पहला श्लोक है, भागवत का पहला श्लोक का टीका में। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि श्रीधर स्वामी पाद ने नरसिंहदेव की स्तुति क्यों की? वाई श्रीधर स्वामी पाद रुद्र संप्रदाय के एक आचार्य है। तो रुद्र संप्रदाय के आचार्य होने के नाते स्वाभाविक है उनको नरसिंहदेव का स्तुति करते हैं। रुद्र संप्रदाय के आचार्यों का मूल आराध्य देव है नरसिंहदेव। जैसे हमारे लिए मूल गुरु है नित्यानंद प्रभु, वैसे रुद्र संप्रदाय के मूल गुरु है नरसिंहदेव। तो उनके सांप्रदायिक देवता है नरसिंहदेव। कभी भी कोई टीका किया जाता है सांप्रदायिक आचार्य और मूल गुरु का स्मरण करते हुए ही किया जाता है। इस तरीके से श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपने संप्रदाय के पदचिन्हों में चलते हुए अपने मूल गुरु भगवान स्वयं नरसिंहदेव को प्रणाम करते हुए ये श्लोक की रचना करते हैं। सबसे पहला प्रह्लाद, ये प्रह्लाद शब्द सब लोग जानते हैं लेकिन अर्थ थोड़ा जानना चाहिए। प्रकृष्ट रूपेण ह्लाद, प्रकृष्ट रूपेण का अर्थ है संपूर्ण रूप में, ह्लादा करते आनंद। यानी जो संपूर्ण रूप में आनंद में आध्यात्मिक आनंद में जो डूबे हुए हैं उनको प्रहलाद कहा जाता है। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र अनेकों अनेकों जब बड़े हैं, लेकिन मध्य संप्रदाय के गुप्त साहित्य के अनुसार प्रहलाद महाराज मूलतः शंकुकर्ण एक महान भक्त थे भगवान के, जो ब्रह्मलोक के ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, ब्रह्मा जी की उपासना सेवा में वो सहयोग देते हैं। एक दिन ब्रह्मलोक में शंकुकर्ण वो भगवान के लिए फूल तोड़ के लेके आ रहे थे, तो समय का थोड़ा सा देर हो गया। ये गलती होने की वजह से ब्रह्मा जी ने कहा, ये ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में आराधना सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, उसमें अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, ये तुम इस ब्रह्मलोक के निवासी नहीं हो, तुम जाओ भूलोक में, तुमको शाप मिलेगा। तब वो बहुत रोने लगे। तब उस समय ब्रह्मा जी प्रसन्न होके पश्चाताप को प्रसन्न होकर कहा कि भूलोक में जब जाओगे, तुम जाके भगवान की आराधना, भगवान का जो ध्यान करने का जो धर्म है उसको स्थापना करोगे और असुरों के कुल में जन्म लोगे, लेकिन फिर भी तुम असुरों की असुरी प्रवृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होगे। इस प्रकार का वरदान शंकुकर्ण को ने दिया था प्रहलाद को। तो सबसे पहला प्रहलाद प्रकट हुए, शंकुकर्ण प्रकट हुए प्रहलाद के रूप में, और आप सब वो लीला जानते हो। और शांतनु के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए भैलिक राज जो है वो शांतनु के पक्ष में है। शांतनु भीष्म पितामह के पिता है, होने के नाते उनको भीष्म पितामह का पक्ष लेना पड़ा, कौरवों का पक्ष लेना पड़ा। इधर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जब शंकुकर्ण उनको शाप मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा, उन्होंने आराधना किया था मुख्य प्राण को, वायुदेव को, वैकुंठ के वायु है वो, प्रकट होकर ब्रह्मा जी के साथ उन्हें वरदान दिया था। इसलिए प्रहलाद एक तरीके से देखा जाए वायुदेव के महान भक्त है। वायुदेव मतलब ये भौतिक जगत का वायु नहीं है, जो हनुमान जी है मूल, हनुमान जी जिसके अवतार है वो वायुदेव है। तो एक प्रकार देखा जाए हनुमान जी के महान भक्त है, और हनुमान जी जो है रुद्र के अंश भी है। इस तरीके से प्रहलाद रुद्रांश हनुमान जी के भक्त है। तो ये हनुमान जी की कृपा से प्रहलाद क्या प्राप्त हुआ, उनको महान भक्ति प्राप्त हुआ भगवान की चरण कमलों से प्रति। तो प्रहलाद जी के रूप में पूरा ये करने के बाद, फिर बाद में दूसरा जन्म में वो शांतनु के बड़े भाई के रूप में बहिलिक राज के रूप में उनका जन्म हुआ। वो विश्वदेव के पक्ष में होने के नाते विश्वदेव कौरवों के पक्ष में थे, कौरवों के पक्ष में से युद्ध किया उन्होंने। भले ही कौरवों के पक्ष में से युद्ध किए, विश्वदेव इस प्रकार प्रभावित नहीं है कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के बाद भी, वैसे ही ये शंकुकर्ण दूसरा जन्म में उन्होंने प्रार्थना किया, मेरा अगर वध हो हे वायुदेव, केवल आपके द्वारा ही वध हो, क्योंकि आप ही एकमात्र हो मेरे हृदय में अज्ञान को वध कर सकते हो। इसलिए भीम ने भैलिक राज को उन्होंने वध किया, और वापस वही प्रहलाद प्रकट हुए हमारे संप्रदाय में, यानी मध्व संप्रदाय में, व्यास तीर्थ के रूप में, व्यासराय तीर्थ। और वही व्यासराय तीर्थ के रूप में लीलाएं करके वही प्रहलाद जी वापस प्रकट हुए, एक महान आचार्य हुए हमारे संप्रदाय में, जिनका नाम है राघवेंद्र स्वामी। ये प्रहलाद का चरित्र है। प्रहलाद, उसके बाद भैलिक राज द्वापर युग में, और यही कलयुग में मध्वाचार्य के शिष्यों के संप्रदाय में आते हुए व्यास तीर्थ, बाद में श्रीपाद राघवेंद्र स्वामी। दक्षिण भारत के लोग जानते हैं राघवेंद्र स्वामी कौन है, बहुत प्रसिद्ध आचार्य है, महान आचार्य है, जो सजीव समाधि स्वीकार किए कुछ ही साल पहले, 300-400 साल पहले की बात है। आप बेंगलोर के रास्ते में जाएंगे, उधर एक जगह पड़ता है मंत्रालयम रोड, गुंटकल के नजदीक में, उधर एक पत्थर है, जिस पत्थर के ऊपर राघवेंद्र स्वामी बैठे और स्मरण में मग्न हो गए, वही पत्थर था जिसमें सत्युग में प्रहलाद ने बैठ के दर्शन देव को ध्यान किया था, स्मरण के आचार्य प्रहलाद। ताप हो गए, प्रहलाद तो भगवान के नित्य भक्त है, इनको इस प्रकार शाप मिलना, ये सब चीजें क्या है? ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, प्रहलाद भगवान नरसिम्हदेव के नित्य पार्षद है। नित्य पार्षद होने के बाद जब भी भगवान नरसिम्हदेव प्रकट होते, प्रहलाद जी प्रकट होते हैं। लेकिन अनेकों अनेकों ऐसे भक्त की प्रहलाद के पच्चिन्नों में चलते हैं और उनको प्रहलाद का स्थान प्राप्त होता है। जो नित्य सिद्ध पार्षद प्रहलाद है, उनके अंदर ये जो साधन सिद्ध जीव है वो प्रहलाद के शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रहलाद ने जिस प्रकार का आनंद को अनुभव किया, वही आनंद को ये जीव भी, जो साधन सिद्ध जीव भी अनुभव करते हैं, ये उसके पीछे तत्व है। इसलिए प्रहलाद हृदयाह्लाद। वैसे मैंने सोचा कि आचार्यों के बारे में बताया जाए, लेकिन अभी समय इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानना चाहिए प्रहलाद के चार जन्म थे और अंतिम में उनका क्या हुआ। श्रीपाद राघवेंद्र स्वामी वो साधना सिद्ध जीव के रूप में हमारे सामने अनेक लीलाएं किए। प्रहलाद हृदयाह्लाद। अभी श्रीपाद श्रीधर स्वामी ये बात क्यों लिखते हैं, प्रहलाद हृदयाह्लाद। श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद के अनुसार भगवान के अनेक अवतार है, कृष्ण अवतार ही है और बाकी सब जितने भी हैं अवतार है। भले ही जितने भी अवतार है भगवान कृष्ण के, उन अवतारों में नरसिम्हदेव श्रेष्ठ है। क्यों? नरसिम्हदेव की श्रेष्ठता इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण है। भले ही वो अवतार के रूप में गिना जाता है, लेकिन वो एक तरीके से अवतारी है। किस रूप में अवतारी है वो अनेकों अनेकों अंशों में हम जानने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान नरसिम्हदेव वो क्या करते हैं, दुष्टों को असुरों को वध करते हैं, उन्होंने किया। हमने ये सुना कृष्ण ने क्या किया, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्कृतियों को वध करता हूं। तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब दुष्टों को वध करते हैं, जैसे शिशुपाल को वध किया या पूतना को वध किया या उन्होंने नगासुर को या शकटासुर को उन्होंने मारा, वो लीलाओं में कृष्ण को मालूम भी नहीं है कि पूतना को उन्होंने वध किया। सारा जगत कहता है कि कृष्ण ने पूतना को वध किया, लेकिन कृष्ण ने पूतना को वध नहीं किया, क्योंकि कृष्ण को भी नहीं मालूम है। अगर किसी ने वध किया होता, कृष्ण को मालूम होना चाहिए मैंने वध किया, तो मुझे मैं वध किया। अगर मान लो कृष्ण को मालूम है कि पूतना को वध किया, क्या पूतना के शरीर के ऊपर खेलते कृष्ण? ये प्रसंग उठाया गया कि कृष्ण पूतना का शरीर मरा पड़ा हुआ है और कृष्ण आराम से खेल रहे हैं उसके ऊपर, उनको मालूम भी नहीं पूतना को वध हुआ। अगर बोले कृष्ण ने पूतना को वध किया तो ये उचित बात नहीं है। आपने किसी को मारा, उस शरीर के ऊपर आप खेलने बैठेंगे? तब ये प्रसंग को लेकर स्थापित किया गया है, पूतना का वध नरसिम्हदेव ने किया। जहां कहीं भी वध होता है असुरों का, वो वध कौन करते हैं? नरसिम्हदेव करते हैं। तो जब, लेकिन नरसिम्हदेव अलग रूप में प्रकट होते हैं, तब असुरों का वध करते हैं, तब उनका उद्धार नहीं होता है। लेकिन जब कृष्ण का नाम लगता है, कृष्ण ने वध किया, अस्तित्व में किसने वध किया? नरसिम्हदेव ने वध किया, तब उस असुरों का उद्धार होता है। यह गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है। हाँ, बड़ा विशेष सिद्धांत है, स्पेशलिटी। नरसिम्हदेव प्राकृतिक किसी ने सुनने लायक है, यानी कृष्ण ने भी वध किया, भगवान रामचंद्र ने भी वध किया, समझ लीजिए। अत्यंत वध का कार्य जो है वो किसका है? क्योंकि वध करने के लिए, किसी को मारने के लिए क्रोध चाहिए। आप ये समझते हो कि भगवान रामचंद्र क्रोधित होकर रावण के ऊपर बाण चलाया था? जब राम बाण चला रहे थे, उनके हंसी था मुख में, उनके मुखारविंद इतना सुंदर हंसी था, तो हंसते हंसते कैसे कोई मार सकता है किसी को? नहीं, ये दंड जो है, मार जो है, किसी को मारना वो गुस्से में ही हो सकता है। वो गुस्से का स्वरूप है कृष्ण का, क्या है वो? नरसिम्हदेव। जब कृष्ण गुस्सा करते वो नरसिम्हदेव है, इसलिए ये स्पेशल रूप है। प्रहलाद हलाद दायिने, यानी प्रहलाद को आह्लाद का अर्थ है कि आनंद प्रदान करने वाले नरसिंहदेव। तो ये भागवत किसका है? भागवत भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, इसलिए कहा गया रसमालयम, जिस रस में सारे भक्त डूब के आनंद को अनुभव करते हैं। रसिका भूवि भावुका, ये भागवत का स्वभाव है, मूल स्वभाव है। तो ये प्रहलाद शब्द प्रहलाद को भी सूचित करता है, और दूसरा हर एक भक्त प्रहलाद है। क्यों? भगवान प्रत्येक भक्तों को, हर एक भक्त को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए प्रहलाद का दूसरा अर्थ है कि भगवान के भक्त। भगवान के भक्त जो भगवान की लीलाओं को स्मरण में आनंद को अनुभव करते हैं, वो प्रहलाद है। यानी दूसरे शब्दों में, जो भक्त भगवान की भक्ति में आनंद में नहीं है, वो भक्त नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा, एक असिस्टेंट है प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी एक भक्त आपसे मिलना चाहता है। प्रभुपाद ने कहा क्यों? तो बड़ा दुखी है, द डिवोट इज वेरी अनहैप्पी। लेकिन प्रभुपाद जी ने सीधा कहा, इफ ही इज अनहैप्पी इज नॉट ए डिवोटी, इफ इज अनहैप्पी इज नॉट ए डिवोटी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रहलाद को कितना दुख मिला, लेकिन प्रहलाद दुखी थे? उनका नाम ही प्रहलाद था। अभी अग्नि में गए लेकिन आनंद में है, उनका नाम प्रहलाद है। विशेष बात है, ध्यान देने लायक है। अग्नि के बीच में है फिर भी उनको क्या बोलते हैं सब लोग, देखो प्रहलाद है। प्रहलाद का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूप में आनंद को अनुभव कर रहा है। कहां है? अग्नि के अंदर है। अभी उनको जहर दिया जा रहा है, वो एकदम आनंद में जहर को पी रहे हैं। ये प्रहलाद है, दिस इज अ डिवोटी। प्रहलाद का अर्थ है भक्त। यानी अगर कोई दुखी है तो सीधा सीधा अर्थ है कि अगर कोई दुखी है वो भक्त नहीं है, ही इज नॉट ए डिवोटी। तो कम से कम भक्त बनने के लिए सुखी रहिए। इफ यू आर अनहैप्पी यू आर नॉट ए डिवोटी। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये सिद्धांत है। प्रहलाद हलाद दायने, या प्रहलाद हृदयाहलादा। तो नरसिंह देव भक्तों के हृदय में आनंद को प्रदान करते हैं। He gives pleasure to the devotees' hearts. मान लीजिए भगवान का स्वरूप क्या है? कृष्ण। मूल रूप में कौन है? कृष्ण। हम कहते हैं कि कृष्ण जो अपनी लीलाओं में सारे भक्तों को आनंद देते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण आनंद देने का काम करते हैं, आनंद लेने का काम करते हैं। भगवान भगवता में क्या कहा? भोक्ता अहम कहा। क्या कहा? यानी कृष्ण क्या करते हैं? ही एंजॉयस। अभी भक्त को आनंद कहां से मिल रहा है? कौन दे रहा है? नरसिंहदेव देते हैं, कृष्ण नहीं देते। कृष्ण क्या करते हैं? वो आनंद अनुभव करते हैं। वो देने का काम कभी नहीं करते। कृष्ण ने कभी दिया किसी को? कुछ नहीं दिया। सुदामा इतना गरीब अवस्था है फिर भी उनसे लिया। ही ओनली टुक, ही ओनली टुक, उन्हें दिया नहीं। वैसे कई प्रकट हो गया तो अलग बात है। जैसे कोई व्यक्ति कहा कि प्रभु जी कृष्ण को तो वो फ्रूट वाले ने खाली फ्रूट दिया था, उनके पेटी में तो ये भर गया था, लेकिन कृष्ण ने दिया वो? कृष्ण चावल लेके आ रहे वाले थे उनको देने के लिए, वो भी नहीं दिया। ही ओनली नोज टू टेक। ये कृष्ण का स्वभाव है। लेकिन सारे शास्त्र में कहा गया कृष्ण जो है देते हैं सब भक्तों को, आनंद देते हैं। ये कौन देते हैं? नरसिंह देते हैं। नरसिंह देव आनंद देते हैं। अभी आगे वाले श्लोक में आएगा किस प्रकार आनंद देते हैं। हाउ ही गिव्स प्लेजर टू डिवोटीज। प्रहलाद हलाद हृदयाह्लाद। अभी आनंद जरूर देते हैं, नरसिंह गिव्स आनंद। ये बात जरूर है कि कोई प्रश्न उठा सकता है, प्रभु जी मैं भक्त हूं, भक्ति में आनंद है, केवल आनंद कांड है, लेकिन मुझे क्यों अनुभव हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने एक बार एक भक्त को उदाहरण दिया था। जैसे एक वायर है, वायर में करंट चल रहा है, मतलब वो पार का वायर होता है ना, तो वायर में करंट चल रहा है, तो उसको पकड़ने से करंट लगना चाहिए, है कि नहीं? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप कोई रबर का ग्लोव पहने हो, कुछ तो आवरण है, इससे करंट नहीं लगता है। तो वैसे ही भगवान की भक्ति जो है केवल आनंद कांड है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं,
क्यों नहीं अनुभव होता है आनंद? उसका जवाब दूसरे जन्म में देते हैं, भक्त्या अविद्या विधारणम। भक्त्या विद्या, भक्ता विद्या, भक्तों की जो अविद्या है विदारणम, उसको नाश करते हैं। भक्तों की अविद्या को नाश करना, भगवान कृष्ण भगवत्ता में क्या कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहमे अहमज्ञाजं तमः नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेण भाष्वता। अभी कृष्ण कोई और काम नहीं है, वो आपके हृदय में बैठ के सबका ज्ञान दूर करते रहेंगे, रासलीला कौन करेगा? हुल्ड रासलीला, नरसिंह रासलीला करेंगे? नो इलाडू, तो कृष्ण इज बिजी। तो ये जो भक्ता अविद्या विदारणम, भक्तों की हृदय में अविद्या को नाश करने का कार्य कौन करते हैं? नरसिंहदेव करते हैं। ये श्रीपाद श्रीधर स्वामी का कहना है, भक्त्या अविद्या विदारणम। जो वैष्णव होते हैं गणेश जी का जब पूजा करते हैं उस समय वो गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में रूप से ज्यादा, गणेश जी की पूजा जो है विद्या अविद्या को दूर करने वाले व्यक्ति के रूप में उपासना करते हैं। दक्षिण भारत में जितने वैष्णव संप्रदाय के गणेश चतुर्थी गणेश के उत्सव के समय सारे अपनी विद्या जो है उनकी किताबों को सब रखते हैं, भगवान गणेश जी को, गणेश जी को अर्पण करते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। गणेश जी जो है मूल उनके आराध्य देव नरसिंहदेव है। गणेश जी के कितने भी शक्ति प्राप्त हुए नरसिंहदेव से प्राप्त हुआ। अभी आपको मालूम है गणेश जी का वाहन कौन सा है? चूहा। अभी सब देवता पहुंचे थे, अभी नरसिंहदेव प्रकट हुए, सब लोग गए देखते हैं क्या हिरण्यकश्यपु कैसे वध किया, और बहुत गुस्से में है, सब ब्रह्मा जी आए, सब लोग आ गए थे, क्योंकि सबका वाहन एकदम तेज चलने वाला था। अभी सब देवताओं ने देखा किस प्रकार नरसिंहदेव ने उनको, हिरण्यकश्यपु को मारे, प्रहलाद बहुत गुस्से में है, ब्रह्मा जी डरे हुए हैं, धीरे धीरे से उन्होंने एक एक देवता स्तुति करने लगे। बाद में उनको शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भेजा, लक्ष्मी जी भी डर गई तो प्रहलाद को भेजे। तो फिर भी प्रहलाद गोद में बैठे हैं, फिर भी नरसिंहदेव का जो गुस्सा है वो शांत दिखाई नहीं पड़ रहा था। प्रहलाद ने स्तुतियां करने के नरसिंहदेव शांत हो गए। शांत होने के बाद भी कोई भी देवता नरसिंहदेव के पास जाने के लिए भयभीत हो रहे थे, अभी पता नहीं कभी वापस हो सकते हैं गुस्से में, अभी भी डरे हुए, नजदीक में नहीं गए अभी तक, अभी दूर ही डरे हुए। अभी नरसिंहदेव शांत हो गए इसका सबूत क्या है? अभी उनको मालूम नहीं पड़ता, कोई चिन्ह होना चाहिए ना कि अभी नरसिंहदेव शांत हो गए। तब उस समय गणेश जी आए, गणेश जी को देर आए, सब पूरा स्तुति होने के बाद गणेश जी आए। गणेश जी का स्तुति नहीं हो सारे स्तुतियों में, क्यों? वो टाइम में वो नहीं थे। वो चूहे के चलते चलते आए और नरसिंहदेव जैसे आए थके थके भागते भागते आए, चूहा भी भाग रहा था, वो भी एकदम पूरा आए। जैसे आए नरसिंहदेव को उन्होंने देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हुए, रूप देख के आश्चर्यचकित होके, तो साथ साथ में चूहा भी आश्चर्यचकित हो गया था। अभी चूहा इधर और सामने नरसिंहदेव है क्या कॉम्बिनेशन है! और चूहा भी एकदम आनंद में हो गया, गणेश जी जो है वो चूहे से नीचे गिर गए। और ये एक दृश्य को देख के नरसिंहदेव एकदम अट्टहास करने लगे महदट्टहासम, एक आचार्य लिखते हैं महदट्टहासम, मतलब क्या? भगवान नरसिंहदेव के जो हंसी है, हंसी का वर्णन मैंने अभी तक देखा नहीं है, हंसी नहीं अट्टहास का अर्थ क्या है, क्या बोले इंग्लिश में, बहुत जोर जोर से हंसना, हंसना जैसे वो हा हा ऐसा ऐसा जोर से हंसता, ऐसा हंसने लगे। तब सारे देवता लोग एकदम ही समझ गया अभी अभी शांत हो गया, अभी इज नाउ पीसफुल। तब वो लोग नजदीक में गए, नरसिंहदेव का आराधना किया, पूजा किया, सब कुछ चला। तो ये अट्टहासम ये देख के इनको बहुत प्रसन्नता हुई। नरसिंहदेव ये प्रसन्न होके गणेश जी को कहा, क्या वरदान चाहिए? गणेश जी ने कहा, बस मेरा स्मरण, मेरा जो सर है हमेशा आपके चरण कमलों में रहे, हमें हमारे हमेशा स्मरण आपके चरण कमलों में रहे। नरसिंहदेव ने कहा कि मैं सारे शक्ति देता हूं तुमको सारे विघ्नों को नाश करने की, विघ्नहर्ता, तभी से गणेश जी विघ्नहर्ता बने। और साथ साथ में उन्होंने कहा, भक्तों की, साधक भक्तों का साधना में विघ्न क्या है? अविद्या ही विघ्न है। किसी ने कहा प्रभु जी मेरी पत्नी जो है बहुत मेरी भक्ति की प्रगति के लिए विघ्न है, नरसिंह से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनका विघ्न नाश हो जाए। ये जो है मेरी भक्ति में प्रगति के लिए ये विघ्न है वो नाश हो जाए। हमारा जिस जगत में कोई विघ्न नहीं है भक्ति की प्रगति में, हम जिस चीजों को विघ्न करके सोचते हैं वो सब विघ्न नहीं है। वास्तविक विघ्न क्या है, मेरे हृदय में जो अविद्या है वही विघ्न है, दैट इज द ऑब्स्टिकल। तो इसलिए श्रीपाद श्रीधर स्वामी श्लोक में लिखते हैं भक्ता अविद्या विधारणम, भक्तों की जो अविद्या को विधारण नाश करने वाले नरसिंहदेव है। तो ये स्पेशलिटी नरसिंहदेव का। तो गणेश जी को ये उन्होंने वरदान दिया था उस समय। शरदिंदु रुचिम वंदे, शरद इंदु रुचिम वंदे, यानी उनके जो आंख है, दोनों आंख है, his mercy is distributed like the moonshine and his face like that of lion. Sharadindu mukham vande, ruchim vande, unka jo mukh hai use bahut sheetal prakash utpann ho raha hai, aur sath sath mein parindra vadanam harin, aur unke mukh hai wo harim, hari ka arth kya hai, share, share ko bhi hari kaha jata hai, hari wo nahi hai, wo hari nahi hai, mukh hai। वारिंद्र वदनम हरि, उनका मुख जो है वो हरि के जैसा है, और मैं वैसे नरसिंह देव को प्रणाम करना चाहता हूं। तब कोई प्रश्न उत्पन्न कर सकता है कि नरसिंह देव का जो मुख किस प्रकार है, सिंह जैसा है, और क्या वर्णन क्या है, शरद इंदु, शरद ऋतु के जो चंद्रमा है उसके जैसा शीतल प्रकाश आ रहा है। आपने कभी देखा है कि शेर क्या सिंह के मुख से शीतल प्रकाश आ रहा है, शेर के मुख से शीतल प्रकाश आता है, तो विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास को प्रस्तुत करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, क्यों प्रस्तुत करते हैं, श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि छठे अध्याय के छठे स्कंध के अंत में परीक्षित महाराज को प्रश्न हुआ। क्या प्रश्न था, कि भगवान पक्षपात बहुत करते हैं, खास करके छठे स्कंध में हम देखते हैं कि इंद्र को कितना सपोर्ट किया भगवान ने, और इतना दुष्ट इंद्र है, यानी हम हमेशा वो भौतिक चीजों के पीछे भागता रहता है, लेकिन भगवान ने इंद्र को बार बार बचाया, और असुरों को बेचारा इतना कसूर नहीं था असुरों का, लेकिन फिर भी पक्षपात किया। तब भगवान पक्षपात करते हैं, कैसे कैसे भगवान है, भगवान तो समदृष्टि होना चाहिए। तो इसलिए सातवां स्कंद का जो पहला अध्याय है उसका शीर्षक क्या है, किसी को याद है, भगवान समदर्शी है। भगवान समदर्शी है उसको स्थापना करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कौन सा लीला को प्रस्तुत किया, वो लीला को प्रस्तुत किया जिसमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है उन्होंने पक्षपात किया। दिखाई पड़ रहा है, अंडरस्टैंड, भगवान समदर्शी है। कैसे बताएं भगवान समदर्शी है, एक लीला सुनाता हूं जिसके अंदर वो किस प्रकार समदर्शी नहीं है ये दिखाई पड़ रहा है, यही सबूत है कि भगवान समदर्शी है। विरोधाभास लग रहा है कि नहीं, पूरा नरसिंह लीला में नरसिंह देव समदर्शित है नहीं है, लेकिन यही लीला सबूत है। भगवान की जो पक्षपात करने की जो लीला है, भगवान की समदर्शी तत्व को प्रकाशित करने का सबूत है। इधर उसी बात को श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्या पारिंद्र वदनम हरिम, वदनम हरिम, हरि का जो मुख है कभी उनके मुख से कभी शीतल प्रकाश निकलता है, शरद इंदु समम। तो इस प्रकार का जो विरोधाभास है ये हम कैसे समझे, ये विरोधाभास में समन्वय है, इसके लिए भगवान कृष्ण भगवान है, नरसिंहदेव भगवान है, ये बात को स्थापना किया जा रहा है। आगे की टीका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस बात को कहते हैं, भगवान में इस प्रकार का विरोधाभास में समन्वय है, वो समन्वय ही विरोधाभास में समन्वय ही इसका भगवत तत्व का सबूत है, समदृष्टि तत्व का सबूत है। इसलिए श्रीपाद भक्तिनाथ ठाकुर अपने तत्व सूत्र में इस बात को लिखते हैं कि विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम, विरुद्ध सामान्यम, विरुद्ध का अर्थ विरोधात्मक बातें, विरोधात्मक बातें समान है इसलिए हमको आश्चर्य होने की कोई जरूरत नहीं है। यह कैसे हो सकता है? न चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वो सब कुछ उनके पास में तृप्त है, आत्मकाम है, सत्य संकल्प सत्य काम, उनको खाली सोचने मात्र से उनका हर इच्छा पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उनको भूख लगता है। शांताकारम है लेकिन फिर भी वो गुस्सा करते हैं। उनको कोई नहीं पकड़ सकता लेकिन यशोदा उनको पकड़ लिया। उस टीका में, उस लीला की टीका में श्रीपाद विश्वनाथ ठाकुर 8 विरोधास्पद बातों को प्रस्तुत करते हैं। दामोदर लीला में विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम, इस बात को जब प्रकाशित किया गया है, वो शेर है, इतना बड़ा शेर है और उनके मुख से एकदम सुंदर शीतल प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, चंद्रमा जैसा विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है, ये विरोधाभास नहीं है। उसका उदाहरण क्या है? अगला श्लोक, अगला श्लोक पढ़िए। ये श्रीधर स्वामी पाद का जो 7वां स्कंद का 9वां अध्याय का पहला श्लोक का टीका में खुद के द्वारा रचित श्लोक है ये श्लोक। उग्रोप्यनुग्रएवायम्, उग्रोप्यनुग्रएवायम्, स्वभक्तानां न केशरे, स्वभक्तानां, ये ना केशरी है वो गलत है, नृकेशरी है। हाँ ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर, तो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया तो उसमें इंग्लिश में मिस्टेक था। स्वभक्तानां नृकेशरी, स्वभक्तानां नृकेशरी, केशरीवैव सुपोतानां, केशरीव सुपोतानां, अन्येनां उग्रविक्रमः, अन्येनां उग्रविक्रमः, उग्रोप्यनुग्रैवायम्, उग्रोप्यनुग्रैवायम्, स्वभक्तानां केशरी। एक जगह हो भी सकता है ना केशरी भी, निकेशर भी हो सकता है ना केशर भी हो सकता है, आप बताऊंगा बाद में कैसे। केशरी व सबूतानां, केशरी व स्वपोतानां, अन्येनाम् उग्रविक्रमः। चलिए उसका अर्थ बताऊं। उग्रोपि अनुग्रहेवायम्, बहुत उग्र है लेकिन फिर भी अनुग्रह है। कैसा है? स्वभक्तानाम, स्वभक्तानाम उनके भक्तों के लिए, ना केशरी मतलब वो सिंह जैसे नहीं है या नृकेशरी है, भले ही नृकेशरी के रूप में है भक्तों के रूप सामने, केशरी एव स्वपोतानाम, जैसे केशरी एव पोतानाम, स्वपोतानाम, बड़ा शेर है, सिंह है और ये सिंह के सामने उनके बच्चे हैं, और बच्चों के लिए सिंह कैसा? सिंह जैसा है। कौन है सिंह बच्चों के लिए? उनकी मां है या उनके पिता है। तो आपने कोई छोटे शेर को देखा है, बच्चे शेर को? हा? मैं देखा था जू में, देखा था मैसूर जू में। तो बड़ा शेर था, उनके बच्चे हुए थे, 4-5 छोटे छोटे थे, तो उस समय बोला कि इसके साथ खेलो, हम गए थे उनके साथ खेलने के लिए। वो बचपन में उनका स्वभाव रहता है करने के, लेकिन उसका दांत वांत तो कुछ नहीं है, वो ऐसा मादे के भी स्वभाव रहता है, वो सब करता है। और इतना बड़ा शेर है, उसके पास देखने से डर लगता है, लेकिन जैसे इन बच्चों को छोड़ा, ये सब भाग के उनके जाकर गोद में बैठ गए और सब दूध पीने लगे, और उधर तो गर्जन कर रहा है। ये जो गर्जन है ये शेर का, वो गर्जन से हमारा हृदय एकदम फट रहा है, लेकिन वो बच्चे आराम से दूध पी रहे और सो रहे हैं। उग्रोपी अनुग्रह वाय, वो उग्र है, किसके लिए उग्र है? असुरों के लिए उग्र है, उग्र है। तो कुछ तो बोलते हैं ना, आई एम ए गॉड फियरिंग मैन, हम भगवान से बहुत डर लगता है, इसका अर्थ क्या है? वो भक्त है नहीं है, वो कुछ तो गड़बड़ किया है, तो इसलिए नरसिंह से डरता है। जो भक्त है नरसिंह से, वो डरते नहीं है, क्या करते हैं? उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। हाँ, वी लव नरसिंह। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि खास करके हमारे मन में बहुत सारे लोग आते, बच्चे आते हैं, भले ही कितना भी कुछ भी सिखाओ, उनको सबसे अच्छा नरसिंह आरती आ जाता है पहला, और नरसिंह आरती गाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को बहुत भयानक चीजों से डर लगता है, लेकिन नरसिंह आरती जल्दी गाना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है, और भक्तों के लिए क्या है? वो वही नरसिंह देव, वही शेर अपने बच्चों के लिए माँ है, वो शेर नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मान लो ये कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज है, वो जो गुनहगार है उसके लिए मृत्यु है, लेकिन उनके पोते के लिए वो घोड़ा बन जाता है, लेकिन कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए भक्तानाम केशरीव सपोतानाम अन्य नाम उग्र विक्रम, अन्य नाम भक्तों को छोड़ के अन्य लोगों के लिए क्या है? उग्र विक्रम, उग्र है। तो इस बात को रचना करते हुए श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस बात को वर्णन करते हैं कि भगवान कोई और नहीं है, वो समदृष्टि है। किस प्रकार है? समान किस रूप में है? रूपा जी उदाहरण देते हैं, एक माँ बच्चे को, तीन बच्चे हैं माँ, एक बच्चे को माँ दूध पिलाती है, एक बच्चे को खिचड़ी खिलाती है, एक बच्चे को पूरी छोले एकदम पूरा स्वीट वीट पूरा पका के एकदम खिलाती है। तो दूर से देखा ऐसा लगता है कि कितना पक्षपात कर रही है माँ, लेकिन माँ से पूछो ऐसा क्यों खिला रही हो? क्योंकि ये जो छोटा शिशु है ये कुछ खा नहीं सकता, खाली दूध ही पी सकता है, और दूसरा जो बच्चा है वो बीमार है, उसके लिए खिचड़ी है, और ये जो है बच्चा एकदम हट्टा कट्टा है, उसका उसको आगे बढ़ना, उसके लिए ये है। तो बहिरंगिक दृष्टिकोण से देखा जाए इधर पक्षपात दिखाई पड़ता है, लेकिन पक्षपात नहीं है, ये है विरुद्ध सामान्यम तस्मिन् चित्रम। तो नरसिंहदेव प्रत्यक्ष उदाहरण है उनकी लीला, किस प्रकार भगवान में परस्पर विरोधाभास दिखने पर भी विरोधाभास नहीं है, उसके अंदर समन्वय है। आगे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, दुनिया भर का सारा तत्व गलत सिद्धांत उसका खंडन और सही सिद्धांत का स्थापना एक ही प्रार्थना में अगर कहीं हुआ है तो वो प्रार्थना है द प्रेयर्स ऑफ द वेदस पर्सनिफाइड। भागवत का 10वां स्कंद 87 अध्याय, ये 87 जो अध्याय है ये भागवतम का क्या है? वो अध्याय है जहां सारे वेद का मूर्तिमान स्वरूप भगवान कृष्ण से वो प्रार्थना करते हैं। चलिए देखते हैं ये प्रसंग। वागीशस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य यस्य च वक्षसि, लक्ष्मीर्यस्य यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तम नरसिंहम अहम भजे, तम नरसिंहम अहम भजे। वागीशस्य वदने, वागीशायस्य वदने, वागीशायस्य वदने, लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवेग, यस्यास्ते हृदये संवेग, तं नरसिंहमहं भजे, तं नरसिंहमहं भजे। वागीशायस्य वदने, वागीशायस्य वदने, लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवेत्, तं नरसिंहमहं भजे, तं नरसिंहमहं भजे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये जो प्रेयर्स द वेदस पर्सनिफाइड, पर्सनिफाइड वेदस, ये पहला श्लोक इस प्रकार है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कहा, उपनिषदों में इस बात को कहा गया है कि परम सत्य को शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, अवांगमय गोचरम, शास्त्र में वर्णन है अवांगमय गोचरम, यानी अवांगमय मतलब वाणी से भगवान की वर्णन नहीं कर सकते, और वेद शब्द है, वेद शब्द होने के नाते परम सत्य का वर्णन वेदों में कैसे वर्णन है, ये प्रश्न परीक्षित महाराज का। द वेदर्स आर लिमिटेड टू डिस्क्राइब इन द क्वालिटीज ऑफ द मेटीरियल नेचर, भौतिक चीजों के गुणों को वर्णन करने में वेद पटु हैं, लेकिन भगवान जो है गुणों से परे हैं, गुणों से परे होने के नाते वेद गुणातीत हैं, वैसे भगवान को कैसे वर्णन कर सकते हैं, हाउ डज वेदर कैपेसिटी टू डिस्क्राइब, ये उनका प्रश्न था परीक्षित महाराज का। तब श्रीपाद सिद्ध स्वामी ये अध्याय की टीका करते हुए ये श्लोक को प्रथम रचना करते, बाद में और एक श्लोक को रचना करते जिसका मैं वर्णन करना चाहता हूं। संप्रदाय विशुद्ध्यार्थम सिव्यानिर्बन्धयन्त्रितः श्रुतिस्तुति मितवाख्यायां कर्ष्यामि करिष्यामि यतामति, यथामति वही भाव जिस प्रकार सुत गोस्वामी प्रस्तुत किया, यथादीतम यथामति, दूसरे अध्याय के अंत में सुत गोस्वामी इसी बात को कहते हैं, मैं वही भागवत को वर्णन करूंगा जो मैंने सुखदेव गोस्वामी सुना था, लेकिन कैसे वर्णन करूंगा, यथाधीतम यथामति, मैंने जिस प्रकार समझा है उसी प्रकार वर्णन करूंगा मेरी योग्यता के अनुसार। उसी भाव को श्रीधर स्वामी इधर लेते हुए क्या कहते हैं, करिष्यामि यथामति, क्या करूंगा, श्रुति स्तुति, श्रुति स्तुति, श्रुति मतलब श्रुतियों की मूर्तिमान देव देवता, उनकी स्तुतियों को मितवाक्यायाम, मितवाक्यायाम का अर्थ क्या है, अल्प शब्दों में, कम शब्दों में, क्योंकि इसका विस्तार से वर्णन नहीं हो सकता, श्रुतियों से बढ़कर कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, करिष्यामि मैं करूंगा कैसे, यथामति, क्यों, संप्रदाय विशुद्ध्यार्थम, मेरी जो संप्रदाय है, संप्रदाय उनका क्या है, रुद्र संप्रदाय, मेरी संप्रदाय का विशुद्ध्यार्थम, उनकी स्थापना करने के लिए स्वीय निर्बंध यंत्रिता, निर्बंध यंत्रिता, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी संप्रदाय के मूल देव मूल सिद्धांत को स्थापना करने के लिए इनके ऊपर मैं व्याख्या कर रहा हूं। अभी मूल देव कौन है संप्रदाय के, नरसिंहदेव, इसलिए इस बात को कहते हैं, नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं, और एक बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये वेदों के स्तुतियां, ये श्रुति स्तुति जिसको भागवत के अंदर दसवां स्कंध में प्राप्त होता है, इसके ऊपर व्याख्या करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए श्रीधर स्वामी पर वापस प्रार्थना करते हैं नरसिंहदेव से, क्या प्रार्थना करते हैं, वागीशायस्य वदने, वागीशायस्य वदने, वागीशा, यस्य वदने, यस्य का अर्थ है कि जिसके यानी नरसिंहदेव के वदने, उनके वदन में यानी उनके मुख में कौन है? वागीश है। वागीशा, वागीशा का अर्थ क्या है? जो वाक्यों के ऊपर ईश्वरत्व प्राप्त कर चुके हैं उनको वागीश कहा गया है। वागीश के दो अर्थ है, एक यानी दूसरे शब्द दो अर्थ ये हैं, एक अर्थ ये है कि महान महान आचार्य, महान महान भक्त जिन्होंने वेदों के ऊपर स्तुति किया है, जिन्होंने वैदिक ज्ञान को समझा है, वर्णन किया है, उन सब का बात आता है वागीश। दूसरा अर्थ है सरस्वती देवी। नरसिंहदेव के मुख में सरस्वती जी है। एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिन को कल्प कहा जाता है। प्रत्येक दिन ब्रह्मा जी जैसे सुबह उठते हैं उनको पूरा अज्ञान में डूब जाते हैं और कोई ना कोई असुर आके उनके हृदय से वेद ज्ञान चुरा लेता है। यह प्रत्येक कल्प में होता है। जब इस कल्प में हुआ तो तपा तपा शब्द सुनाई पड़ा, ब्रह्मा जी के को ये शब्द सुनाई पड़ा, तापा तापा, ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। कृष्ण प्रकट होके स्वयं अपनी बांसुरी की आवाज से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ज्ञान प्रकाशित किया। कैसे? कृष्ण स्वयं अपनी बांसुरी से। इसलिए इस कल्प का आराध्य देव कौन है? कृष्ण है। पिछले कल्प में क्या हुआ था? ब्रह्मा जी वैसे ही मोहित हो गए थे, उनको पूरा असुर ने आके चुरा लिया, पूरा अविद्या में भर गए थे और ब्रह्मा जी तब उनको कोई शब्द तपा तपा करके सुनाई नहीं पड़ा। क्या सुनाई पड़ा मालूम है? आवाज सुनाई पड़ा ऐसा। तो ब्रह्मा जी का सारा वेदिक ज्ञान प्रकाशित हुए। नरसिंह देव का जो रोर है, द रोर ऑफ नरसिंह, बाय द रोर ऑफ नरसिंह ब्रह्मा वाज इनिशिएटेड। इस बार जो है कृष्ण बांसुरी के द्वारा ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, लेकिन पिछले कल्प में नरसिंह देव का जो गर्जना है वही वैदिक ज्ञान है। कोई शेर का गर्जना जो होता है वो हम लोग क्या सोचते हैं कि शेर का गर्जना है, लेकिन नरसिंह देव का गर्जन ही वेद है। जब हम लोग वैदिक स्तुति सुनते हैं वो नरसिंह देव का गर्जन है, जिसके द्वारा क्या हुआ था? ब्रह्मा जी के हृदय में उनको उन्होंने दीक्षा प्रदान किया। अभी क्या दीक्षा देगी? आप बैठे दीक्षा दे रहे कि आपका गुरु है वो गर्जना किए। तो इसलिए शास्त्र में यह वर्णन है कि जिस प्रकार सिंह जैसे गर्जना करते हैं, सिंह गर्जना करते हैं सारे सियार फालतू फालतू जानवर भाग जाते हैं कि नहीं, उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या कहा जाता है? सिंह गुरु। उनकी जो गर्जना है उनका प्रवचन है, उस सुनने से हमारे हृदय में जो सियार है सब भाग जाते हैं, हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो भाग जाते हैं। एक सुंदर स्तोत्र है जिसमें अनर्थों को सियारों के बराबर तुलना किया गया है, एक अष्टकम है, नरसिंह करावलंब स्तोत्रम। दो करावलंब स्तोत्र है, एक करावलंब स्तोत्र जो है वो शंकराचार्य लिखा है और एक करावलंब स्तोत्र श्री वैष्णव संप्रदाय का आचार्य लिखा है। कभी मौका मिले शाम को वर्णन करेंगे उसका अंग्रेजी लेक्चर में। ये करावलंब स्तोत्र बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र, इसके अंदर हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है वो सीआर के बराबर है। जो व्यक्ति नरसिंहदेव की उपासना करता है, नरसिंहदेव का गर्जना से क्या हो जाता है? वो सीआर सब भाग जाता है। तो वागीशस्य वदन है, सरस्वती देवी नरसिंहदेव की वदन में है। यानी जो भी व्यक्ति कुछ भी भगवान के बारे में बोलना चाहता है, कले भले ही वैदिक मंत्र भी क्यों ना हो, जब तक नरसिंहदेव का अनुग्रह नहीं है वो वेद नहीं होते। आगे आता है स्थितियों को। वेद भले ही वेद हैं, भगवान की वर्णन करते हैं, लेकिन वेदेशु दुर्लभम, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। और वही भगवान भगवद्गीता में क्या कहते हैं? वेदेश सर्वेर अमय वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है। और दूसरी जगह क्या कहा गया है? वेदेशु, कैसे समझे इस बात को? इधर नरसिंहदेव आते हैं, वेदा माइनस नरसिंह दुर्लभम। यानी आप वेद का पठन कर रहे हो लेकिन नरसिंहदेव नहीं है आपके जीवन में। वेदों का वर्णन क्या है? आम्यया अभ्यसनानि अरण्य रुदितम। थोड़े शिखर आलवार कहते हैं कि वेदों का उच्चारण जो है वो क्या है? जंगल में रोने के जैसे बराबर है। जंगल में रो कुछ फर्क पड़ता है? और जानवरों को आकृष्ट करोगे, आओ मैं इधर हूं आके खाओ मुझे, चुपचाप रहना चाहिए जंगल में। जंगल में रोगे कोई आदमी आके आपको रक्षा नहीं करेगा, जंगल में रोने से और खतरा बढ़ती है कि नहीं? इसलिए नरसिंहदेव के बिना कोई भी वैदिक शास्त्र पढ़ोगे, चाहे गीता हो चाहे भागवत हो चाहे कुछ भी वैदिक शास्त्र हो, दुर्लभम, आपको वेदों के जो गम्य है कृष्ण उनको प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन वेदों का या अन्य शास्त्रों का नरसिंहदेव को साथ में लेके पढ़ोगे, यानी नरसिंहदेव की कृपा से पढ़ोगे, तो क्या होगा, आपको वेदों के गंतव्य कृष्ण प्राप्त होंगे। इसलिए क्या कहा गया इधर, वागीशस्य वदने, इसलिए जब भी कोई भी शास्त्र का वर्णन करोगे, शास्त्र श्लोक उच्चारण करोगे, बोलना चाहते हो या समझने के लिए पठन करना चाहते हैं, तो नरसिंहदेव को प्रणाम करना चाहिए। तब नरसिंहदेव की जो अंतरंगा शक्ति है सरस्वती, ये भौतिक सरस्वती नहीं, आध्यात्मिक जगत की जो सरस्वती है जो हंस के ऊपर बैठती है, भौतिक जगत की सरस्वती कहां बैठती है मालूम है? कमल के ऊपर बैठती है, कमल के ऊपर बैठती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत की सरस्वती संस के ऊपर बैठती है। और आध्यात्मिक लक्ष्मी कहां बैठती है? कमल में बैठती है। भौतिक लक्ष्मी कहां बैठती है? उल्लू के ऊपर बैठती है और सबको उल्लू बना देती है। ये भौतिक विद्या जो है वो सबको उल्लू बनाने के लिए, भौतिक विद्या जो है जिसके द्वारा हम धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। क्यों आप किसी से बच्चे पूछे स्कूल क्यों जा रहे हो, सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर मान लो इतने भी स्कूल कॉलेज है उसके बाद नौकरी ना मिले, कोई बड़े जाएगा स्कूल कॉलेज में? बताइए, अगर नौकरी ना मिले पूरा कॉलेज इंजीनियरिंग डॉक्टर मेडिकल सब करने के बाद अगर नौकरी ना मिले कोई जाएगा उधर? यानी ये विद्या किसके लिए है? पैसा कमाने के लिए। इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा दिया रॉ स्लॉटर हाउसेस, क्योंकि लक्ष्मी जी बैठी है उल्लू के ऊपर और सबको देख रही है, कौन है वो उल्लू जिसके ऊपर मैं जाके बैठ, और सरस्वती को गुलाम बना के रखी है लक्ष्मी, भौतिक लक्ष्मी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वागीशस्य वदने, वागीश अर्थ है वाक की ईश्वरी, कौन है वो? सरस्वती। सरस्वती जो है लक्ष्मी के भी अधिष्ठात देवी है, इसलिए भगवान उनके मुख में रखते हैं लक्ष्मी जी को, नरसिंहदेव। बाद में लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, लक्ष्मी कहां है? नरसिंहदेव के वक्षसि, वक्षसि का अर्थ क्या है? वक्षस्थल में है एक लक्ष्मी, भगवान के वक्षस्थल में है एक लक्ष्मी, गोद में भी है। ऐसे अनेकों अनेकों नरसिंहदेव के रूप है, विग्रह है, अभी उन सब के बारे में बता नहीं सकते, उनके उसके लिए आपको दिव्य देश में जाना पड़ेगा। 108 दिव्य देशों में कम से कम 10 या 15 नरसिंहदेव के दिव्य देश है, एग्जैक्ट गिना नहीं मैं। दक्षिण भारत में श्री वैष्णव संप्रदाय में दिव्य देशम करके है, दिव्य देश का अर्थ है जो दिव्य है, जो इस जगत के नहीं है। श्री संप्रदाय के अनुसार हर व्यक्ति को 108 जीवन में एक बार तो 107 में जाना, 107 में जाओगे 108 में जाओगे, 108 जो है वैकुंठ है, उधर तो हम लोग इस शरीर से नहीं जा सकते। 108 पूरा करोगे यात्रा 107 तो 108 आठवां में जा सकते हो। तो बड़े बड़े महान भक्त हुए मधु संप्रदाय में और श्री संप्रदाय में, जिन्हें बड़े बड़े स्तुतियां की नरसिंहदेव की। बाद में लक्ष्मी रस्य वक्षसि, उनके वक्ष में है। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी के बारे में आचार्य वर्णन करते हैं, असल में कृष्ण जो है दयामय नहीं है, कृष्ण बड़ा दया में बोलते हैं ना, कृष्ण के अंदर दया इसीलिए है क्योंकि लक्ष्मी जी है हृदय में। इसलिए कहा गया है कि आप सब बहुत फेमस इसमें कि क्या है वो वर्ष वेंकटेश्वर सुप्रभातम में लक्ष्मी जी हृदय में निवास करते हुए भगवान के अंदर करुणा प्रदान कर रही है, ये बात उधर वर्णन है। लक्ष्मी जी हृदय में निवास करके नरसिंहदेव के हृदय में करुणा प्रदान कर रही है, और नरसिंहदेव के मुख्य कौन कौन मुख में कौन है? सरस्वती है। इसलिए जब आप सरस्वती यानी अध्ययन करते हो उस समय क्या करना चाहिए? सरस्वती का स्मरण करना चाहिए या नरसिंहदेव का स्मरण करना चाहिए। नरसिंहदेव का स्मरण करने के द्वारा हमारे हृदय में करुणा प्रकट होती है। करुणा प्रकट होती है तब जो भी हम बोलते उसका असर लोगों में रहता है। यस्यास्ते हृदये संवित, इसलिए यस्यास्ते हृदये संवित, जिसके द्वारा द लॉर्ड इज ऑलवेज कंप्लीट इन नॉलेज विद इन हिमसेल्फ। संवित शक्ति, भगवान संवित शक्ति के द्वारा परिपूर्ण होने की वजह से जो व्यक्ति भगवान नरसिंहदेव का आश्रय लेते हुए वेदों का अध्ययन करता है या वेदों का वर्णन करता है, गीता भागवत का वर्णन करता है या पठन करता है, उसके हृदय में संवित शक्ति का आवेश होता है। यस्यास्ते हृदये संवित तम नरसिंहम हम भजे, मैं उन नरसिंहदेव को प्रणाम करना चाहता हूं, भजन करना चाहता हूं, भजन करता हूं, जिसके वजह से मेरे हृदय में उस संवित शक्ति को प्रकाशित हो, जिसके द्वारा मैं इन श्रुति स्तुतियों का ऊपर टीका कर सकूं। ये श्रीधर स्वामी का हृदय है। आगे ये 31st वर्ष है, 31वां श्लोक है उसी अध्याय का, जिसमें भगवान को वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार वो सृष्टि स्थिति प्रलय सबके कारण है, इसका वर्णन हुआ है इस श्लोक में। उसका टीका में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं देखिए, इसका अनुवाद इस प्रकार है, इस मूल श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि ये तत्व वाला श्लोक है कि भौतिक प्रकृति का कभी सृष्टि नहीं हुआ ना आत्मा का सृष्टि हुआ, दोनों सनातन है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के बीच संपर्क में आता है, इस शरीर का प्रकट होता है जो अनित्य है। जैसे वायु और जल का मिश्रण जब होता है तो बुड़बुड़ प्रकट होता है, वायु है जल है लेकिन बुड़बुड़ अनित्य है, वैसे ये शरीर जो है अनित्य है, लेकिन भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति और आत्मा दोनों नित्य हैं। जब इन दोनों का संस्पर्श होता है, यही संस्पर्श जा भोगा, वो भोग क्या है, वो शरीर भोग भोग्य है, वो क्या है, वो अनित्य है। और एक उदाहरण दिया गया है, जब नदियां सागर में मिलते हैं एंड जस्ट एज रिवर्स मर्ज इनटू ओशन और द नेक्टर फ्रॉम मेनी डिफरेंट फ्लावर्स इनटू हनी, सो ऑल दीज कंडीशन बीइंग्स इवेंचुअली मर्ज बैक इनटू यू द सुप्रीम लॉर्ड अलोंग विद देयर वेरियस नेम्स। इसी प्रकार सारे जीव हे भगवान आपके अंदर प्रवेश कर देते, ऐसा वैदिक स्तुतियां करते। उसकी तात्पर्य में क्या कहते हैं, मैं अंतर्यंता सर्वलोकस्य गीता श्रुत्यायुक्ता चैवमेवा वशेष्य यह सर्वज्ञ सर्वशक्तिर नरसिंह श्रीमंतम तम चेतसावलंबे। चेतसावलंबे में अपने चित्त से आपका शरण ग्रहण करता हूं। जो नरसिंहदेव है, सारे वैदिक वेद आपकी स्तुति कर रहे हैं, वैसे नरसिंहदेव को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके अंदर सारे जीव हर सूच प्रलय होने के बाद जिनके अंदर चले जाते हैं। प्रलय भी नरसिंहदेव की शक्ति से होता है, क्योंकि जहां जहां नाश करना है नरसिंहदेव करते हैं। तो इसलिए नरसिंहदेव की स्तुति श्रीधर स्वामी इन श्लोकों के द्वारा करते हैं। ये बड़ा तत्व से पूर्ण श्लोक है। श्रीधर स्वामी पाद को जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया मूल टीकाकार के रूप में, भागवत के टीकाकार के रूप में, जब उन्होंने नरसिंहदेव की कृपा से भागवत की टीका किया है, तो हमको भी नरसिंहदेव से प्रार्थना करना चाहिए हमारे अंदर भी ऐसी संवित शक्ति प्रदान करे जिसके द्वारा हम भागवत को समझ सके और उसको वर्णन कर सके। नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न वगैरह तो पूछे नहीं, क्वेश्चन ठीक है, समाप्त करेंगे 11 बजे ठीक, और एक प्रवचन शुरू होगा मनवाली प्रभु नरसिंह लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, और शाम को 5 बजे कीर्तन होगा, 5:30 बजे नरसिंहदेव का अभिषेक होगा, और उसके बाद डांस ड्रामा होगा, उसके बाद और एक प्रवचन होगा जिसके अंदर क्या लू, मैं सोच रहा हूँ इतना सारा चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ अहोबिड़ नारसिंह स्त्रोत्र में इसके ऊपर जो चर्चा किया जाए, नरसिंह स्त्रोत्र, ये थोड़ा सा है, देखते हैं क्या शाम को क्या लिया जाए। हरे कृष्णा।